तो फिर उनकी सुनने का हमें क्या सार मिला, हमने क्या उतारा, बात हम जहां से शुरू करते हैं आगे फिर चलता है उसका, उसी चीज को खोलता है। सुनाना संतों ने महात्माओं ने बहुत कुछ सुना दिया हमको, लेकिन सिर्फ सुना ही अपनाया नहीं।
वो तो बिना अपनाए तो कुछ होना ही नहीं,
होना ही नहीं,
बात तो वही बनती है।
और जहां जो भी है संसार की बात को रहना, हमने संसार ये बात समझना संसार में, लेकिन संसार में किस ढंग से रहना, जिस दिन ये बात अपने अंतर्गत उतर आई फिर देखो इतना यही बात वाक्य संसार है ही नहीं। कभी लगा सुन सुनकर ये बात फिर अपने में उतरेगी, वाक्य संसार है, फिर मैं कैसे जी रहा हूं इस संसार में, फिर आप अपने आप में देखना वही जीवन मुक्ति का पूर्ण एहसास है। और क्या एहसास
नहीं, सुनने से भी कई बार नहीं उतरती।
बिल्कुल ठीक है,
सुना तो यहाँ हो ही गया, हमारे को 65 साल हमारे को हो ही गए यहाँ।
मैं तो कहता हूँ स्वामी जी से, कहा मैं स्वामी जी को 63 बंदे बता दो जो आप जहाँ पर मुक्त करवा रखे
हैं तो बोलते हैं ना,
नहीं निकले। क्यों? सुनने का तात्पर्य क्या है? श्रवण का मतलब यह वेदांत वाक्यों को गुरु मुख द्वारा उसका तात्पर्य निश्चय, तात्पर्य निश्चय जो है ना वो नहीं कर पाते हैं।
बात तो वही है, लेकिन करना बहुत कठिन होता है ना। बात तो यही है, प्रैक्टिकल में लाना हर बात को बहुत कठिन होता है। प्रैक्टिकल में तो हमारा जो व्यवहार का है वो नहीं आता, दूसरे की बात तो पारमार्थिक तो बात दूर की है। जो व्यवहार की हमारी बातें हैं वो हमारे प्रैक्टिकल में कहाँ आती हैं? व्यवहार में हम ऐसी बातें कितनी करते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल में नहीं है। व्यवहार में हम लोगों को हर रोज क्या क्या बतलाते हैं वो हमारे अंदर है, कभी भी नहीं है, नहीं हमारे अंदर ही नहीं उतरेगा कहाँ से। वो जो हम लोगों को बोल बोल के कहते रहते ना पूरा व्यवहार में, हमारे अंदर नहीं होता, वो केवल हमारी वाणी में होता है, हमारे हृदय में नहीं होता। महापुरुषों का तत्ववेत्ताओं का यही फर्क होता है, उनके हृदय में जो होता है उनकी वाणी में आता है, और जो उनकी वाणी में आता है उनके प्रैक्टिकल में क्रिया में होता है।
बहुत बढ़िया।
आम संसारी लोगों का और महात्माओं का इतने अंतर होता है, उनकी हृदय की चेतना, हृदय की जो उनका संकल्प है, उनकी वाणी में और उनकी क्रिया में एकता होती तीनों में। लेकिन आम लोगों के तीनों में अलग अलग होता है, हृदय में अलग होता है, वाणी में अलग होता है, क्रिया में अलग होता है।
नहीं तो वो सुखमणी साहब ने यही बताया, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखी एक स्मित कोई, कहो नानक ये ज्ञान। ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण, ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण है जानी कि मन साचा
मुख साचा,
मन में कुछ मुख में कुछ, वो गड़बड़ संसारी जन।
शास्त्रकार भी लिखते हैं कि यथा चित्तम तथा वाचस, यथा वाचस तथा क्रिया, जैसा चित्त में हो वैसा वाणी में हो, जैसा वाणी में हो वैसा क्रिया में हो। तो चित्ते वाची क्रियायाम चा साधु नाम एक रूपता, चित्त में और वाणी में क्रिया में साधुओं में एक रूपता होती है तीनों में, लेकिन आम लोगों में नहीं होती। गुरु नानक जी महाराज कहते हैं कि जो अंदर होता है ना उसका बाहर वाणी से पता चल जाता है, जो जिए हो सो उगवे मोह का कहे वाऊ। जो मुंह से आप बोलते हैं ना वो तो एक वायु की तरह होते हैं, वायु जैसे आई तो चलेगी, उसका कोई असर नहीं होता। अंदर जो होता है वो उगलता है, बाहर आता है। इसलिए जो महात्माओं का, जो सज्जनों का जो होता है ना कहना और उनके अंदर की बात जो होती है वो बाहर निकालते हैं, वो केवल बोलते नहीं उनके अंदर भी होता है। उसी का हमारे को अनुभव में बात वही आती है जो महात्माओं ने प्रैक्टिकल करके बताई होती है, सज्जनों ने बताई होती है, जिज्ञासुओं ने बताई होती है। इसलिए तो कहते हैं कि जो मतलब शास्त्र है वो ना अज्ञानी के लिए है ना ज्ञानी के लिए है, शास्त्र है ही जो ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है उसके लिए, सामान्य ज्ञान वालों के लिए शास्त्र है। अज्ञानी को जरूरत ही नहीं उसको समझ में आएगा नहीं कुछ भी, जड़ है वो तो पामर है वो, और ज्ञानी को जरूरत नहीं क्योंकि वो शास्त्र से आगे जा चुका है, उसने जो पाना था वो पा लिया, आप तो काम पूर्ण काम हो गया वो। तो जितना शास्त्र है जितनी विधियां है वो केवल जिज्ञासु के लिए होती है, जिज्ञासु ही मुक्त हो सकता है, अज्ञानी नहीं हो सकता। अज्ञानी भी हो सकता है लेकिन जब वो जिज्ञासु बनेगा, अज्ञानी का मतलब जो जिज्ञासु नहीं है अभी पामर में विषय में चल रहा है, विषय भी हो सकता है मुक्त, महात्मा कहते हैं, लेकिन अज्ञानी नहीं हो सकता क्योंकि विषय जो पुरुष है ना वो भी कभी कभी उब जाता है, उसको भी ग्लानी हो जाती है संसार से भोगते हुए। इसलिए विषयी जो आदमी है वो भी मुक्ति की सीढ़ी पर जा सकता, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन अज्ञानी हो नहीं सकता, अज्ञानी को जरूरत नहीं है। इसलिए जो शास्त्र की विधियां हैं सब हमारे लिए, जिज्ञासुओं के लिए हैं। कल हमारा विचार ये चल रहा था कि सकल दृश्य सो अध्यास, तो कल हमने इसी पर विचार किया था, एक ही पंक्ति पर किया था विचार कि संपूर्ण जो दृश्य है वो दृश्य से ले लेंगे हम नाम रूप आत्मक अस्थि भांति प्रिय को छोड़ करके दृश्य लेंगे। दृश्य में तो दिखाई पड़ता है, अस्थि भी पड़ता है, भांति भी पड़ता है। जो हम देखते हैं कोई भी वस्तु तो घट है, पट है, ऐसा बोलते हैं ना, घड़ा है, कपड़ा है, मकान है, उसमें तो है पना भी है। वैसे तो वो भी दृश्य में आ रहा है ना, जब सुनने में तो आ रहा है, नहीं है। अभाव को भी है रूप में देखते हैं, भाव को भी देखते हैं। तो दृश्य में केवल नाम रूपात्मक दो चीजें लेनी है। नाम रूपात्मक जो दृश्य है वह अध्यास है, अस्थि भांति जो प्रिय है ना हमारा स्वरूप है उसकी भी अनुभूति बीच में है सामान्य रूप से। अस्थि ये सामान्य रूप से है ना भी है, और भांति प्रतीत होता है, कोई वस्तु की प्रतीति होती है, और आनंद रूपता भी भासती है थोड़ी थोड़ी, प्रियता उसमें है ना, हर वस्तु में प्रियता है, हर वस्तु में अस्थिपना है, और हर वस्तु प्रतीत होती है। तो जो हमने लेना है नाम रूपात्मक जो सकल दृश्य है वह अध्यास है। वैसे तो कहते हैं उपनिषदकार के सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यह सब ब्रह्म है। जैसे अभी कह रहे थे कि शंकराचार्य ने तो बोल दिया कि यह संसार तीनों काल में हुआ ही नहीं, लेकिन ऐसा अनुभव में कहाँ आता है कि नहीं हुआ। हमारे को तो कभी नहीं ऐसा लगता कि नहीं हुआ, मरण पर्यंत भी नहीं लगता। ज्ञानी की बात तो अलग है, लेकिन आम लोगों की, सामान्य लोगों को कभी प्रतीत नहीं होता। सुनते जाते हैं। भाई गुरदास जी महाराज जो हुए हैं ना, उन्होंने एक वचन बहुत सुंदर कहा है, एक दिन मैंने पहले भी निवेदन किया था। वो कहते हैं पूछत पथक ते मार्ग न धारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। पूछत है वैद खात औखद न संजम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाइए। पूछत सुहागण कर्म है दुहागण के, हृदय वे विचार कत सहजा बुलाइए। गाये सुने आंखे नीचे पाइए ना परम पद, जैसे कह रहे थे अभी कि बहुत ज़्यादा सुनने से, बहुत ज़्यादा सुनाने से, समाधि लगाने से, आंखें मीचने से, जैसे हम बहुत देर से सुनते आ रहे हैं ना, समाधि लगा लगा के बैठते भी हैं, चिंतन भी करते हैं, लेकिन परम पद की प्राप्ति हमारे को नहीं हुई। वही उदाहरण उन्होंने दिया, पूछे तो पथक ते मार्ग ना धारे पग, पूछते रहते हैं हम कि दुर्गाने को कौन सा रास्ता जाता है, शिवालय को कौन सा रास्ता जाता है, लेकिन चलते नहीं है, प्रैक्टिकल में नहीं लाते। तो प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए, जो हमारे प्रियतम का देश है, प्रियतम को हमने प्राप्त करना है, बातों से कैसे जाएंगे। बातें तो है पूछना, और हर रोज कहते रहना कि हम जाएंगे, लेकिन जाते नहीं है। तो कभी भी जब तक हम प्रैक्टिकल में अनुभव में नहीं लाते, फिर पूछते हैं शिष्य लोग भाई गुरदास जी से कि आपने कहा कि गाय सुने आंखें नीचे पाइए ना परम पद, नहीं मिलती परम पद, नहीं मिलता गाने से, सुनने से, आंखें नीचे बैठने से। इसका मतलब यही नहीं कि वहाँ खंडन है कि नहीं बैठना चाहिए या समाधि नहीं लगानी चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, इसका खंडन नहीं है। वहाँ ये बात सिद्ध करते हैं वो कि केवल आप उसको कथनी में लाएंगे तो नहीं होगा, कहने में लाएंगे, वाणी में लाएंगे तो कभी परम पद की प्राप्ति नहीं होगी, ना तो कहने वाले को ना सुनने वाले को, किसी को भी नहीं होगी जब तक उसको आप क्रिया में नहीं लाते। इसलिए वहाँ खंडन बैठने का सुनने का नहीं है, क्योंकि उपनिषदकार भी कहते हैं कि ना आत्मा प्रवचने लभ्य हो ना मेध्या ना बहु ना श्रुते, ये जो आत्मा है ना प्रवचने लभ्य हो, ये प्रवचन से लभती नहीं है, मिलती नहीं है आत्मा का साक्षात्कार। ना आत्मा प्रवचने लभ्य हो, प्रवचन मतलब करना अथवा दूसरे के वचन सुनना, उससे आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। ना मेधया, मेधा कहते हैं जो हमारे को ग्रंथों को पढ़ के उनको धारण करने की शक्ति, मेधा। बहुत ज़्यादा मेधा किसी की होती है ना, उसको बहुत ग्रंथ कंठ हो जाते हैं अथवा सुनने से बहुत कुछ कंठस्थ हो जाता है। तो वो कहता भले रहे लोगों को, मेरे को इतना आता है, मैं इतना सुना सकता हूँ, लेकिन ये उपनिषदकार कहते हैं कि नहीं हो सकता। ना मेधया ना बहु ना सुरतेन, बहुत ज़्यादा सुनने से श्रवण करने से नहीं होता। हम तो अपने ही देख लें और किसी की बात क्या है कि हम तो जहाँ सुन ही रहे हैं ना, लगातार भी सुनते हैं और एक साल के बाद वेदांत सम्मेलन भी सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन में तब्दीली कहाँ आती है। तब्दीली आने से पता चल जाता है कि हमारा जीवन बदल चुका, हम स्वयं अनुभव कर लेते हैं कि हमारे जीवन में कोई तब्दीली आई है, व्यवहार में आ जाती है। परमात्मा की तो बात ही अलग है, जिसने मनन किया होता है ना, जो उसको प्रैक्टिकल मिलाता है, उसके व्यवहार में तब्दीली आ जाती है, उसके घर में या व्यवहार में या लोगों के साथ बातचीत करने में तब्दीली आ जाती है, उसका शिष्टाचार ही बदल जाता है। जो स्वरूप की अनुभूति है वो तो किसी को बतला ही नहीं सकता कोई, ना हम उसके देख करके ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि इसको स्वरूप का अनुभव हो गया है या ये ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसा हम अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन उसके व्यवहार से पता चल जाता है कि ये आदमी सत्य मार्ग पर चल रहा है, इसके अंदर सत्य का कुछ अंश है। उसके व्यवहार से पता चलता है, उसके शिष्टाचार से पता चलता है, वो कभी भी किसी बात का अहम नहीं करता, गर्व नहीं होता उसको, उसको अपनी विद्या का, अपने गुण का, अपनी संपत्ति का, किसी चीज़ का अहम नहीं होता, अहम नहीं करता, वो विनम्र हो जाता है। उसके चरने में, उसके बैठने में, उसके देखने में, सभी क्रियाओं में अंतर पड़ जाता है, उसकी क्रिया ही बदल जाती है आम लोगों से, जिसके अंदर अनुभूति होती है। अनुभूति वो किसी को नहीं दिखा सकता, ना आप उसकी बाहरी क्रिया को देख के कह सकते हैं कि इसको परोक्ष मतलब अपरोक्ष हुआ या नहीं हुआ है। ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है आज तक किसी के पास कि वो किसी को दिखा दे कि ये ब्रह्म ज्ञानी है, नहीं दिखा सकता वो। ऐसे ऐसे भी ब्रह्म ज्ञानी महात्मा हैं जिनकी बाहरी क्रिया से तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, उनकी बाहरी क्रिया ऐसी होती है कि पता नहीं लोगों को क्या क्या उनके ऊपर शंकाएं हो जाती है, क्या क्या उनके ऊपर आरोप लगा देते हैं लोग। लेकिन हमारे पास क्या है ऐसा प्रमाण तो नहीं है ना ये ब्रह्म ज्ञानी है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान कैसे हम दिखने वाला तो वो चीज़ है नहीं है। स्वरूप वो ऐसा है कि वो ना किसी प्रमाण का विषय है, ना उसको हम वाणी से बता सकते हैं, ना उसको हम कान से सुन सकते हैं, वो तो अनुभूति है ना स्वयं। इसलिए कोई आदमी ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मैं बता सकता हूँ कि ये ब्रह्म ज्ञानी है कि नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी तो जो होता उसको स्वयं ही पता चल जाता है, जहाँ उसको जो उसकी अवस्था में पहुँचा हुआ होता है। जैसे गुरु अर्जन देव जी कहते हैं ना कि ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने, दूसरा कैसे जानेगा। हम लोग जो धोखा खा रहे इसी से खा रहे हैं कि हम अपने अनुभव से लोगों का अनुमान लगाते हैं और बोल देते हैं, अनुमान नहीं लगाते बोल भी देते हैं कि इनको कहाँ से ज्ञान हुआ है, बोल देते ना हम लोग, देख के बोल भी देते हैं कि इनको तो ज्ञान गुण कुछ नहीं हुआ है, उनकी बाहरी क्रिया को देख के हम कहते हैं कि इनको ज्ञान नहीं हुआ है। हमारे को कैसे पता है कि इनको ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञानी ही तो दूसरे की बात जानेगा ना, हम अपने लिए नहीं जानते तो दूसरे का अनुमान कैसे लगाएंगे। हमारे अपने अंदर तो अंधेरा है, दूसरे के लिए अनुमान लगाते हैं हम कि उसको ज्ञान नहीं हुआ या ज्ञानी है। इसलिए जो ज्ञानी हो गया है वो ही दूसरे की बात जानता है, जिसको आत्मदर्शन हो गया है ना उसके लिए सब जगह आत्मा का दर्शन होता है, वो कभी किसी को उसको कोई अज्ञानी दिखता ही नहीं है, क्योंकि अज्ञान द्वैत में दिखता है ना। अज्ञान जो अज्ञान का कारण है द्वैत, जब वो दूसरा उसको दिखता है तो दूसरे के गुण अवगुण की बात करेगा ना वो, जब उसको दूसरा दिखेगा ना तो कहेगा कहाँ से। हम लोग किसी का दोष आरोपण करते हैं या किसी के गुण अवगुण की बात करते हैं, किसी की निंदा किसी की स्तुति हम कब तब करते हैं, जब तक हमारे को दूसरा दिखता है, जब दूसरा हमारे को दिखेगा नहीं तो उसकी बात कहां से करेंगे। ये सब जितना व्यवहार है कल्पित है, जब तक द्वैत है तब तक हम दूसरे की बात करते हैं, किसी की निंदा स्तुति तभी तक करते हैं। लेकिन गुरु महाराज गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा। उस्तत और निंदा दोनों छोड़ोगे तभी खोजे पद निर्वाणा, निर्वाण पद। यहां पर सब आशाएं सब कामनाएं की समाप्ति हो जाती है, निर्वाण पद है वो। कहते हैं ना आज किसी आदमी की निर्वाण तिथि है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? जिस दिन वो समाप्त हो गया उसको हम निर्वाण तिथि बोलते हैं। आज फलां महात्मा की निर्वाण तिथि है, किस दिन वो ब्रह्मलीन हुए थे, भाव ब्रह्म में चले गए थे वो। तो खोजे पद निर्वाणा, निर्वाण पद कहते तब खोजोगे आप उस्तत निंदा दो त्यागे। जब तक हमारे निंदा स्तुति हम किसी की कर रहे हैं, हमारे को दूसरा दिखता है, परंतु हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये भी बात गुरु तेग बहादुर जी ने साथ में कही है, जन नानक एहो खेल कठिन है। ऐसा नहीं है किन्हों गुरुमुख जाना। किसी किसी ने जो गुरु के सन्मुख है, गुरुमुख का अर्थ क्या है, जो गुरु के सन्मुख है, गुरु की शरण में पड़ा है, उसने जाना है, दूसरे ने नहीं जाना। कठिन है, असंभव नहीं है, ये भी बात है। महाराज ने यह नहीं कहा कि असंभव है कि कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। कठिन है, कठिन जरूर है, असंभव नहीं है। ये नहीं कि प्राप्त नहीं हो सकता, हो सकता है, पर उसको खोजने के लिए कठिनता पड़ती है। उसको खोजने में अपना समय देना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है, महात्माओं के पास जाना पड़ता है, बार बार उसके तर्क के द्वारा उसको पक्का करना पड़ता है। एक बार हमने सुन लिया है, सुन तो लिया है कि ही बार, लेकिन वो ठहरता क्यों नहीं है। सुन लेते हैं लेकिन उसके ऊपर तर्क दे करके उसको पक्का नहीं करते ना। एक बार सुन लेते हैं तो इधर से सुनते हैं इधर से निकल जाता है। उसको अंदर ठहराने के लिए सभी साधन है ना, जितने साधन है उसको अंदर ठहराने के लिए है। कल भी हमने निवेदन किया था कि प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं है, जो प्राप्त हमने मान रखा उसको हटाने के लिए साधन है। जो हमारी मान्यताएं है ना, यही हमारे को दुखी करती है
जी।
परमेश्वर की सृष्टि किसी को दुखी नहीं करती, हमारी अपनी बनाई हुई सृष्टि हमारे को परेशान करती है। दो प्रकार की सृष्टि होती है, एक ईश्वर की सृष्टि है, एक हमारी अपनी मन की सृष्टि है, मनुष्य की सृष्टि है। जो ईश्वर की सृष्टि है वो किसी को परेशान नहीं करती। जैसे पांच भूत हैं ये किसी को परेशान नहीं करते, ईश्वर के बनाए हुए हैं। जो हमने बनाया है ना, आगे हमारे पुत्र है, हमारी पत्नी है, हमारा मकान है, हमारी कार है, ये हमारे को परेशान करती। ये परमेश्वर ने नहीं बनाई, ये हमने बनाई है। हमने बनाई का मतलब इसको हमने इसके ऊपर अपना मोर लगा रखी है, ये मेरी है। जिसके ऊपर मेरे की छाप लगती है ना वो दुखी करता है। मेरा अहम, किसी जो अहम है ना, यथार्थ अहम है, वो किसी को दुखी नहीं करता। जिसके ऊपर मेरा की छाप लग जाती है वो दुखी करता है। तो मेरा मेरा जहां हम करते हैं वो ईश्वर ने नहीं बनाया, वो हमने ही बनाया है। उसको हमने मेरा मेरा मान रखा है, इसलिए वो हमारे को परेशान करता है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे। जब तक आप मेरी मेरी करते रहोगे ना हरेक वस्तु को देख करके, तब लग काज एक नहीं सरे। एक काज कौन सा है? काज एक नहीं सरे का अर्थ लोग करते हैं भी एक भी कार्य सिद्ध नहीं होगा, ऐसा अर्थ नहीं उसका। क्योंकि मेरी मेरी करते हम कार्य तो कर ही रहे हैं। एक कार्य है जो मोक्ष रूपी कार्य है, वो सरे का तो पूरा नहीं होगा, वो सरेगा नहीं, वो पूरा नहीं होगा जब तक मेरी मेरी करते हैं हम लोग। क्योंकि अहम हमारा जो इस इंद्रियों में अंतःकरण में शरीर में अहंता हो गई है, और इसके साथ जो संबंधित पदार्थ है उसमें ममता हो गई हमारी। बी महाराज जी कहते हैं कि बोयो बीज अहम मम अंकुर, गुरबाणी में महाराज जी ने कहा है। स्वयं के अंदर जाकर के महाराज जी बोलते हैं कि क्या हुआ, बोयो बीज अहम, अहम रूपी बीज हमने बोया है, हर एक जगह, तो उसे अंकुर कौन सा निकला? मम, बोयो बीज अहम मम अंकुर, बीतत करत औद अघना। इसी चक्कर में कहते हैं आपकी पाप करते हुए पूरी आयु बीत जाती है अहम मम के चक्कर में। तो इसलिए जब लग मेरी मेरी करते हैं तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए। जब मेरी मेरी का अहम जो मेरी मेरी मिट जाती है ना, तब हमारा मोक्ष रूपी कार्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए कल बात हमारी वहां चली थी अध्यास के ऊपर कि सकल दृश्य सो अध्यास नारायण छोड़ना। तो हमने सकल दृश्य का ही कल इतना ही विचार करते रहे हम लोग कि सकल दृश्य जो है ये इसको छोड़ना है हमने। संपूर्ण दृश्य में हम लोग का शरीर भी आ जाता है, अंतःकरण भी आ जाता है, इंद्रियां भी आ जाती हैं, हमारे समेत सकल में सर्व सर्व में सभी आ जाता है। संपूर्ण हमारे शरीर को लेकर के जो दृश्य है, जो दृश्य होता है वह अनित्य होता है, वह परिच्छिन्न होता है, कार्य होता है, बदलता रहता है। दृश्य का अर्थ क्या है? जो दिखाई पड़ता है उसको दृश्य कहते हैं, जो दिखाई पड़ता है उसको क्या कहते हैं? दृश्य। भाव जो देखने का विषय है, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो है दृश्य। जो दिखाई पड़ता है हमारे को वो कभी दिखाई पड़ने से सभी समय में तो वो दिखाई नहीं पड़ता। कोई भी वस्तु है जो दिखाई पड़ रही है ऐसा नहीं कि वो दिखती ही रहती है, कभी उसका अभाव भी हो जाता है ना। संपूर्ण जो हम दृश्य देखते हैं घटपट आदि, इसका हर समय में हमारे को दिखाई नहीं ये देते, कभी कभी इनका अभाव भी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दृश्य है जो दिखाई दे रहे हैं पदार्थ, वह परिवर्तनशील हैं, बदल जाते हैं। तो जो बदल जाता है वो अनित्य होता है, नित्य नहीं ना होता। वो जो आज दिखाई दे रहा कल नहीं है, वो अनित्य हो गया। जो नित्य होता है वो हर समय में हर देश में दिखाई पड़ता है। लेकिन जितने पदार्थ हम देखते हैं उसमें से कई पदार्थ ऐसे हैं जो अभी दिख रहे हैं, थोड़े समय में नहीं दिख रहे। तो इसका मतलब हुआ जो दृश्य है वह अनित्य है, और जो अनित्य होता है वो व्यापक नहीं होता, परिच्छिन्न होता है। परिच्छिन्न का अर्थ होता है थोड़ी जगह में रहता है, परिच्छिन्न उसको मतलब बांट सकते हैं हम देश से, वस्तु से और काल से। ये बातें थोड़ी कठिन पड़ती है, जैसे जहां घड़ा पड़ा है ना, यहां जैसे ये कुछ भी फोटो पड़ी है, इसको एक परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न का मतलब ये इस समय में है और थोड़े समय के बाद ये नहीं रहेगी, ये समाप्त हो जाएगी। इस देश में है, उस कमरे में नहीं है। देश से, काल से और वस्तु से, उससे ये भिन्न है, उस फोटो से ये फोटो भिन्न है। तो ये परिच्छिन्न हुई। भाव जिसको हम समय मतलब देश से, काल से, वस्तु से अलग कर सकते हैं। देश का मतलब होता है इस स्थान में और दूसरे स्थान में ना होना। हम लोग जहां बैठे हैं उधर नहीं है, हम लोग पहले नहीं थे अभी हैं, आगे भी नहीं रहेंगे। हम लोग मतलब शरीर को लेकर के कह रहे हैं, ये शरीर पहले भी नहीं था, अभी है वर्तमान में, आगे जाकर के नहीं रहेगा। तो देश से भी अलग हो इसको कर लिया हमने, एक देश में है दूसरे में नहीं है, एक काल में है दूसरे काल में नहीं है। वस्तु भाव एक दूसरे से हम लोग अलग हैं, वो हमारे से अलग है, हम उससे अलग हैं। जो दृश्य होता है वह अनित्य होता है, वह परिच्छिन्न होता है, वह कार्य होता है, परिवर्तनशील होता है। जो दृष्टा होता है, दृष्टा कैसा होता है? दृष्टा और दृश्य का एक दूसरे से बिल्कुल विरोधी हैं दोनों, दृश्य और दृष्टा। जैसे अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के विरोधी हैं, जब अंधकार रहेगा तो प्रकाश नहीं रहेगा। इसी प्रकार दृष्टा और दृश्य का अंतर है, दोनों विरोधी धर्म वाले हैं। जो दृश्य होता है वो अनित्य होता है, जो दृष्टा होता है वो नित्य होता है। क्यों नित्य होता है? दृष्टा पता किसको कहते हैं? दृष्टा किसको कहते हैं? देखने वाले को दृष्टा कहते हैं, जो देखता है, समझ गए? जो दिखता है उसको दृश्य कहते हैं, जो देखता है उसको दृष्टा कहते हैं। तो जो दृष्टा होता है ना, देखने वाला, वो नित्य इसलिए उसको मानते हैं क्योंकि वो किसी चीज को होते हुए भी वो जानता है, जब वो चीज नहीं रहती तब भी जानता है, भाव बदलता नहीं है, उसके अभाव को भी जानता है वस्तु के, और वस्तु को भी जानता है, दोनों को जानता है। तो ये कहते हैं कि सकल दृश्य, संपूर्ण जो दृश्य है ना, सो अध्यास, वह अध्यास है। ये हम विचार कर रहे थे कि संपूर्ण जो दृश्य है वो अध्यास है। तो अध्यास, अब बात आ गई अध्यास की। सकल दृश्य तो हम जान गए ना, जो संपूर्ण जो दिखाई पड़ने वाली वस्तु है ये दृश्य है, और हम कौन हुए? दृष्टा। जो दृश्य होता है वो दृष्टा के सापेक्ष होता है, भाव जब दृष्टा रहेगा तब तक दृश्य रहता है, परंतु जो दृष्टा होता है वो दृश्य के सापेक्ष नहीं होता, निरपेक्ष होता है। उसको दृश्य की जरूरत नहीं है, बिना दृश्य के भी वो रहता है, बिना दृश्य के भी वो है ना, दृश्य नहीं है जब तक दृष्टा नहीं है, लेकिन दृष्टा है, दृश्य के बिना भी है, क्योंकि जब नहीं है घट पट तब भी दृष्टा तो है, उसके अभाव को भी वो जानता है। ये अंतर है ना दोनों में। जैसे दीपक होता ना, दीपक, जैसे हम कहीं कोई नाटक हो रहा होता है, नाटक, तो नाटक के अभी नहीं, अभी तो लाइट हो गई, लाइट को देख लो, जिस कमरे में, जिस हॉल में हो रहा है ना नाटक कर रहा है, उसमें नाटक करने वाले जो पात्र हैं वो भी हैं, जो नाटक करते हैं, एक नाचने वाला है वो भी है, और उसमें सभासद भी बैठे हैं, एक वहाँ का अध्यक्ष भी बैठा है, सभी लोग बैठे हैं ना। जब सभी लोग बैठे हैं तो वो जो लाइट है सबको प्रकाशित करती है, नाटक जो करने वाले नाटक को नाटक कर रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं, एक उसका प्रधान है वो भी बैठा है, सब लोग बैठे तब भी वो प्रकाशित कर रहा है। जब आधी रात को समाप्त करके वो लोग चले जाते हैं तो फिर क्या लाइट चले जाती है? लाइट तो तब भी रहती है, भाव उनके होते हुए उनको ही प्रकाशित करता, तो उनके अभाव को ही प्रकाशित करता है, इसलिए वो उसको साक्षी कहते हैं। साक्षी होता ना, जो देखने वाला होता वो कहता कि मैंने दोनों को लड़ते हुए देखा, लेकिन वो लड़ाई करता नहीं है, इसलिए उसको हम साक्षी कहते हैं, उसने केवल देखा है दोनों को। तो दृष्टा का मतलब होता जो साक्षी होता है, जो देखता है, तो साक्षी का मतलब होता रहते हैं तब भी देखता, नहीं रहते तब भी वो देखता है। तो सकल दृश्य सो अध्यास, ये एक पंक्ति है, कल भी हमने इसी का विचार किया था कि सकल दृश्य जितना दिखाई पड़ रहा है ना वह अध्यास है। अब बात आ गई अध्यास शब्द की, कि संपूर्ण जो दृश्य है वह अध्यास रूप है। अध्यास किसको कहते हैं? अध्यास का अर्थ होता है भ्रम, भ्रांति। तो भ्रांति का इतना यदि बोल देंगे कि अध्यास कहते हैं भ्रांति को, तब भी हमारे को क्या पता चलेगा? नहीं ना पता चलता। हमने बोल दिया अध्यास का अर्थ होता है भ्रांति या भ्रम, तो भ्रम किसको कहते हैं? तो एक शब्द हो गया ना, शब्द हुआ ये। तो अध्यास को हम भ्रांति बोल देंगे तो कोई पता थोड़ी चलता है। शब्द आपने सुन लिया, पहले अध्यास था, बाद में हमने कह दिया अध्यास का अर्थ है भ्रांति, तो समझ में तो नहीं आएगा ना कि क्या चीज है वो। उसको खोल के जब तक नहीं समझेंगे तब तक नहीं पता चलता कि भ्रांति किसको कहते हैं, भ्रम किसको कहते हैं। मोटी मोटी परिभाषा करते हैं बहुत सरलता से, गुरबाणी के अंदर जो आई है ना कि माधवे क्या कहिए, भ्रम ऐसा जैसा मानिए वो है ना तैसा, यही है ना उसकी भ्रम की परिभाषा कर रहे हैं ना गुरु महाराज कि हे माधो भ्रम क्या चीज है। जब हमने अध्यास का अर्थ भ्रम कर दिया तो भ्रम क्या चीज है? उसका शाब्दिक अर्थ है कि जैसा मानिए होए ना तैसा। जैसे रज्जू को हमने सर्प मान लिया, रज्जू पड़ी है ना रस्सी, तो उसको हमने अंधेरे के कारण सर्प मान लिया ना, वो सर्प तो नहीं है। जैसा मानिए वो है ना तैसा, जैसा हमने मान रखा है वैसा ना हो उसको भ्रम कहते हैं। तो यहां सर्प क्या है? भ्रम है ना। सर्प हमें मान लिया ना रस्सी को, लेकिन सर्प है नहीं। यही तो गुरबाणी में आया ना उसका, कि जैसा मानी है वो है ना तैसा, जैसा हमने मान लिया है वैसा होता नहीं है, जो उसको धर्म कहते हैं। तो जो रस्सी में सर्प दिख रहा वो क्या है? धर्म है ना, धर्म मतलब कल्पित है, झूठा है वो। तो ये कहते हैं कि सकल दृश्य सो अध्यास, यही बात कही, जितना संपूर्ण दृश्यमान पड़ रहा है ना दिखाई हमारे को, यह भ्रम है। तो कैसे समझा? जैसे रस्सी में सर्प है नहीं ना वो, लेकिन हमारे को दिखता है कि नहीं दिखता? उसको देख के हम डरते हैं कि नहीं डरते? रात को रस्सी पड़ी हो टेढ़ी मेढ़ी तो हम देख के डरते हैं, भागते भी हैं, कहीं हमारा उसके ऊपर पैर आ जाए ना कहीं अंधेरे में तो हम गिर पड़ते हैं। कई बार रस्सी भले पड़ी हो लेकिन पैर उसके ऊपर आ जाए तो हम गिर पड़ते हैं। किसी को बुखार हो जाता है कि सर्प के ऊपर हमारा पैर आ गया, तो उसमें से सत्य मान के हमारे को डर लगा, तभी हुआ ना उसको, हमने सत्य माना है, लेकिन है वो झूठा था, भ्रम था। इसी प्रकार कहते हैं ग्रंथकार की सकल दृश्य सो अध्यास, जो संपूर्ण जगत दिखाई पड़ता है ये अध्यास है, भ्रम है। इतनी बात को हम यदि चिंतन कर लेंगे तो साक्षात्कार हो ही जाएगा। इसलिए कई लोग कहते हैं कि बाबा जी सारी उम्र बीत गई आपको रस्सी में सर्प आपसे निकला नहीं। एक यहां आदमी कहता था हमारे को कि 60 साल हो गए आपको, आप रस्सी से सर्प नहीं निकाल पाए, हर साल आप यही डोरा पीटते हैं लेकिन आपका सर्प अभी निकला नहीं, रस्सी से, रस्सी में पड़ा है, नहीं ना निकला। 60 साल से दांत स्मरण में यही कहते हैं भाई, जैसे रस्सी में सर्प है, कहते हैं सर्प निकलेगा कब, अभी रस्सी में पड़ा है 60 साल से। भाव सुनने से नहीं ना कुछ हो रहा, उसको जब हम सुन लेते हैं वहीं छोड़ देते हैं ना, जब उसका चिंतन करेंगे तभी निकलेगा ना। बात तो इतनी निश्चय करनी है कि रस्सी में सर्प नहीं है, ये हमारे को मालूम नहीं है, जब हम टार्च लेके देखते हैं तो कहां सर्प है। इसी प्रकार हम अपना चिंतन करेंगे तो निकल जाएगा, बात तो इतनी है, लेकिन इतनी भी निकलती नहीं है, सुनने पर भी नहीं निकलती, क्योंकि वहां सुनने मात्र से हमारा बैठना है, सुनना, उसको धारण करना हमारा मन नहीं ना होता। सुनने में मजा आता है थोड़ी देर के लिए, तो फिर दूसरे दिन आ जाते हैं, भी 2 घंटा बैठेंगे तो उतनी देर मजा आता है, महात्मा बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, उन्होंने अच्छे प्रमाण दिए हैं, वो उनसे अच्छा बोले हैं, वो उनसे अच्छा बोले हैं, हमारे को तो देखने में यही आता है ना, उनका सुनने जाएंगे इनका मजा नहीं आता। ये भी बात हमारे अंदर आती है ना, इनको सुना था ये अच्छा नहीं बोलते, मतलब उनका बोलना जो उनकी आवाज़ है जो बोलना है वो है हमारे अंदर, रुचि तो उसी की है ना, वो क्या बोलते हैं ये तो बात अलग है। हम तो पसंद करते हैं महात्मा को, कौन सा महात्मा कैसा बोलता है, लेकिन महात्मा तो एक ही बात कहते हैं ना, कोई कैसा भी बोलता है वो अलग बात है, कि कोई ज़्यादा गहरा जाता है, कोई सीधा बोलता, बात उन्होंने इतनी कहनी है। तो हम लोग तो क्वालिटी देखते हैं महात्माओं की, कि कौन सा कैसा बोलता है, तो केवल हम उनकी वाणी को सुन रहे हैं, वाणी को सुनने से कुछ नहीं होता, केवल वाणी जो है ना उससे कुछ नहीं। अभी मैंने निवेदन किया ना कि सुनने से थोड़ी केवल कुछ होता है, होता है सुनने से, लेकिन सुनने का मतलब होता है उसके तात्पर्य को निश्चय करना, तब तो होता ही है। गुरु महाराज ने तो सुनने का महात्म बहुत बतलाया, ये सुने सिद्ध पीर सुन रात, सुने धरत धवल आकाश, सुनने से तो कहते सिद्ध हो जाते हैं, पीर हो जाते हैं बड़े बड़े, सुनने से इंद्र की पदवी को प्राप्त हो जाते, सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद्र, मारे कहते सुन के ही वो ईश्वर बन गए, ब्रह्मा हो गए, क्या सुना उन्होंने ऐसा, सुन तो हम ही रहे हैं लेकिन हम तो कुछ भी नहीं बने, सुनने से और नीचे जा रहे हैं। सुन के कभी भी हमने कोई अपने जीवन में कोई बदलाव लाया हो तो तब तो हम कहें ना। इसलिए बात ये है सोचने वाली कि महाराज जी सुनने का महात्म बतला रहे हैं तो हमारे ऊपर क्यों नहीं असर हो रहा, जब सुनने से मारे कहते इतनी इतनी दूर पहुंच गए लोग, तो हम लोग तो बदले ही नहीं रहे, फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब यह है कि सुनने का हमारे को तरीका ही नहीं है, कैसे सुनना है, कैसे उसको मनन करना है, कभी हमने उसके बाद पूछा ही नहीं है, सुनने के बाद कभी पूछा थोड़ी है किसी से कि मारे हमने सुना बहुत है, सुनते रहते हैं, लेकिन इसका हमारे ऊपर असर क्यों नहीं पड़ रहा, कैसे सुनना चाहिए, कैसे मनन करना चाहिए, ये जिज्ञासा हमारे अंदर उठती नहीं है। अब ये कहते हैं कि सकल दृश्य सो अध्यास, बात अध्यास पर चल रही है। अध्यास शब्द जो है उसमें अधि है और आस है, दो शब्द हैं, अधि है आस है, उसको कहते हैं अध्यास। अधि का अर्थ होता ऊपर, अधि कहते हैं ऊपर को, आस कहते हैं आरोपित करना, बैठाना, आस कहते हैं बैठाना, अधि कहते हैं ऊपर, अन्य के ऊपर अन्य को बैठाना, किसी के ऊपर किसी के गुण और धर्म का आरोप कर देना। जैसे रस्सी है ना, रस्सी, रस्सी के ऊपर हमने क्या बैठा दिया, सर्प, सर्प बैठाया नहीं है, सर्प के धर्म उसमें कल्पित कर दिए कि सर्प ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता है, सर्प काला होता है, ये होता, जो जो उसके धर्म है ना उसको हमने उसमें ले आके थोप दिया है, नहीं है। अधिक अर्थ होता ऊपर, आस का अर्थ होता बैठाना, कल्पित करना, उसको कहते अध्यास। तो हमने अध्यास का मतलब है कि अन्य के गुण धर्म को अन्य में बैठा दिया। तभी तो जैसे हम किसी को कह देते हैं कि ये मूर्ख है, या किसी को कह देते हैं ये गधा है, मानो हमने किसी को बोल दिया, बोल देते हैं ना तुम तो गधे हो, क्या वो गधा है जिसको हमने बोला, वास्तविक गधा है वो, तो क्यों बोला हमने कि तुम गधे हो। गधे के जो धर्म है ना उसको हमने उसमें लाद दिया उसके ऊपर, कि जैसे गधा होता है ना उसको मतलब भाव कोई मालूम नहीं होती, कोई व्यवहार की मालूम नहीं होता उसको, इसलिए उसको गधा बोल दिया हमने, या किसी को हमने बोल दिया आप तो शेर हो, वो शेर थोड़ी है, वो शेर जैसी उसके अंदर शूरवीरता है, शेर की तरह वो दहाड़ता है, बोलता है, तो उसको शेर तो हमने, वो शेर नहीं है लेकिन शेर वाले धर्म उसमें हैं, गधा नहीं है, गधे वाले धर्म उसके आरोपित करके हमने बोला, यही तो समझने वाला है ना, यही अध्यास है और क्या है, जो जैसा ना हो वैसा उसको मान लो तो वो अध्यास है। तो हमने अपने ऊपर भी तो ऐसा ही, हमारे ऊपर भी तो ऐसा हुआ, हमने अपने आप को क्या मान लिया कि मैं छोटा हूँ, मैं सेवक हूँ वह स्वामी है, मैं जीव हूँ वह ब्रह्म है, हम अपने आप को अल्पज्ञ मान लिया कि नहीं, हम है नहीं ऐसे, जैसे हमने उसको मान लिया, गधा मान लिया, चेयर मान लिया, ऐसे हम ही ऐसे नहीं है, वास्तविक थोड़ी है लेकिन मान लिया, तो माना किसके द्वारा, मन के द्वारा, इसको मानने में हमने क्या लगाया, अपने मन में ऐसा बैठा लिया कि मैं जीव हूं, मैं अल्पज्ञ हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये कैसे हमने ऐसा क्यों माना कि हमने अपनी आत्मा और मन को एक जैसा मान लिया, इंद्रियों के साथ आत्मा को जोड़ दिया, आंख के साथ जोड़ दिया, कान के साथ जोड़ दिया, कान जो है सुनते हैं, आंख देखती है, ये तो हम जानते हैं ना कि देखना धर्म किसका है, आंख का है, सुनना किसका धर्म है, कान का है, तो हम ये कब कहते हैं कि हमारी आंख देखती है, हम कहते हैं मैं देखता हूं, ये तो नहीं कहते ना कि मेरी आंख देख रही है, मैं आंख को देखता हूं, ऐसा नहीं कहते, हम कहते मैं देखता हूं, ऐसा तो बोलते हैं कि मेरी आंख जो है खराब है, इसका मतलब है कि मैंने देख लिया कि मेरी आंख खराब है, डॉक्टर के पास तो बाद में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाके वैद्य के पास खुद बताते हैं कि मेरी आंख खराब है, तो डॉक्टर हमारे से सियाना कि हम सियाने हैं, जान तो हम खुद गए कि मेरी आंख ठीक नहीं है, डॉक्टर तो केवल दवाई देगा ना, ये तो हमारे को पता चल गया कि हमारी आंख ठीक नहीं है, पता चल गया कि नहीं हमारे को, कान मेरे जो है नहीं सुनते, ये तो मेरे को खुद पता चल गया, डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर यदि डॉक्टर को हम कुछ ना बताते बैठ जाते तब तो होता ना, वो अपने आप कहता कि आपके शरीर में क्या फॉल्ट है, हम तो उसको खुद बता रहे कि मेरे को ये रोग है, तो हम वैद्य हुए कि नहीं हुए, खुद हम बता रहे उसको कि मेरी आंख ठीक नहीं है, मेरे कान ठीक नहीं है, इसका मतलब है कि हम इनको जानते हैं, इनको जानते हुए इनके साथ अटैचमेंट हमारी होगी तब भी कहते हैं मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, इसी से पता चलता ना कि हमने मान्यता है हमारी ऐसी है नहीं है वास्तविक, मान्यता को हटाना है और कुछ करना ही नहीं है, मान्यता को हटा दो बस कि मैं देखता हूं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं देखता, आंख देखती है, मैं नहीं सुनता, कान सुनते हैं, तो ये कहते सब अध्यास है, भ्रम है सब, हमने अपना आप उठा के उसमें बैठा दिया। जानना जो है जानना, वो हमारा धर्म था जानना, लेकिन हमने इनके ऊपर बैठा दिया। ये जानते नहीं किसी को, ये तो जड़ है, ये कैसे जानेंगे किसी को, अपने आप को नहीं जानते। दूसरे हमने जड़ का चेतन का लक्षण किया था ना
जी,
कि जड़ उसको कहते हैं जो अपने आप को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता। तो जो आंख है वो अपने आप को भी नहीं जानती, दूसरे को कैसे जानेगी। वो आंख जो है किसी को नहीं जानती, वो अपने आप को नहीं जानती। वो आंख को कहो तुम अपने आप को देख के बताओ, हम अपनी आंखों से अपनी आंखों को देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना, अपनी आंखों से अपनी आंखों को नहीं देख सकते। आ शीशे में खड़े होकर के देखो अलग बात है, वैसे आप कहो कि आप अपनी आंखों को देखो तो देखेंगे, अपने चेहरे को नहीं हम लोग देख सकते, क्योंकि ये जड़ है, नहीं जानते जी, ये अपने आप को भी नहीं जानते। जो अपने आप को नहीं जानता वो जड़ होता है, तो दूसरे को कैसे जानेगा। इसका मतलब है कि दूसरे को ये नहीं जानता, ये तो हमारी सत्ता से लग रहा है ऐसा। तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाता सर्वविदं विभाति। श्रुतिकार कहते हैं कि तमेव भांत मनुभाति सर्वम, उसके प्रकाश से ये सारा संपूर्ण प्रपंच प्रकाशित हो रहा है। तस्य भाषा सर्व इदम विभाति, इदम सर्वम जो नाम रूप है, तिस्दय चानन सब में चानन होए, उसके चानन से उसके प्रकाश से सब में चानन होए, सभी में चानन उसी के प्रकाश हो रहा है। जब अपनी ज्योत खिंचे है तू स्वामी, पंक्ति आपने सुनी होगी, गुरबाणी की पंक्ति है, जब अपनी ज्योत खिंचे है तू स्वामी तब कोई करो दिखा बखियाना, फिर बताओ कौन देखेगा। जब अपनी ज्योत खींचे है तू स्वामी, हे स्वामी जब तुम अपनी ज्योति खींच लेते हो तो कौन देखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ज्योति से सब देख रहे हैं, इसमें ज्योति नहीं है, लेकिन वो ज्योति जो है ना परिच्छिन्न होने से अपने आप को अलग मानने लगी है। ज्योति अलग होने से अपने आप को अलग मान रही है। ज्योति तभी कहते हैं कि ज्योति ज्योत मिली संपूर्ण थी आराम, सूरज किरण मिली जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम, ज्योति ज्योति में रल गई तो मिलेगी, तभी वो ज्योति थी तो मिली, नहीं तो कभी मिल नहीं सकती। जो घड़ का पानी है ना, जो घड़े में पानी डाला हमने, उसको हमने गंगा में डाल दिया जा करके, तो फिर क्या हुआ, घड़ का पानी अलग करके दिखाएंगे आप, फिर भी जब तक घड़ा है ना उसमें, घड़ा जब तक घड़े को रस्सी बांध के तो गंगा में डाल दो, तो जल और घड़े का तो गंगा का एक हो गया, लेकिन जब तक घड़ा है तब तक अलग सा प्रतीत होता है, भले उसमें डुबोया ही हो गंगा में घड़ा, जल तो एक जैसा हो गया, लेकिन जब तक घड़ा है तब तक वो करेंगे घड़े में पानी है, पानी कहाँ घड़े का है, पानी तो गंगा का है, लेकिन घड़े ने उसको अलग सा दिखाई पड़ता है नहीं। वो तो ज्योति उसी का रूप था, तभी उसमें मिली है, यदि नहीं होती तो मिलती नहीं। जो सदा के लिए अलग होते हैं वो मिलते नहीं कभी भी, जो अलग होते हैं ना, जिनका धर्म ही अलग होता है, कभी मिल ही नहीं सकते। जब ज्योति उसमें मिलती है तो इसका मतलब उसी का रूप था वो, तभी मिली ना उसमें, नहीं तो मिलती नहीं। आकाश जो घाट में आकाश दिखाई पड़ता है, जब घटा फूट गया तो वो आकाश था, तभी उसमें मिल गया ना, मिला कुछ नहीं हुआ, घड़ा फूटा हमने, आकाश कहीं आया नहीं था, कहीं गया नहीं था, हुआ ही कुछ नहीं था, आकाश तो अलग हुआ ही नहीं था, केवल घड़ा बनाया था, तो घड़े को जिसने अवकाश दिया उतना अलग हो गया, घड़े को जगह दी ना जितने आकाश ने, उस अलग दिखने लगा, वो अलग हुआ नहीं है, केवल घड़े को जगह देने से हुआ। तो इसी बात, ये सब अध्यास है जितना है ना, ये केवल भ्रम के कारण हमारे को भास रहा है। शंकराचार्य महाराज भी कहते हैं कि अतस्मिन तद बुद्धि अध्यासा, अध्यास की परिभाषा करते हैं, लक्षण करते हैं, कि अतस्मिन तद बुद्धि, अतस्मिन वही जो हमने किया, जो जैसा ना हो उसमें वैसी बुद्धि हो जाना अध्यास है, समझ गए ना। वही सर्प वाला दृष्टांत या स्फटक मणि वाला दृष्टांत, वो वैसा नहीं है लेकिन ऐसा उसको हमने मान लिया, उसको कहते हैं अध्यास। तो ये संपूर्ण जो अध्यास का लक्षण जो इसमें किया है ना, वो कहते हैं कि ब्रह्म का जो विषय वस्तु है, ब्रह्म का जो विषय वस्तु है ना, जिस वस्तु का हमारे को भ्रम हो रहा है, वो वस्तु और उस वस्तु का ज्ञान, दोनों को अध्यास कहते हैं। जैसे हमारे को सर्प का भ्रम हो रहा है, सर्प भी अध्यास है और सर्प का ज्ञान भी अध्यास है, दोनों झूठे हैं ना, सर्प भी झूठा सर्प का ज्ञान भी झूठा। तो इसी प्रकार ये जगत है, जगत भी झूठा तो इसका ज्ञान भी झूठा। तो हम जितना कर पढ़ रहे हैं, जो डिग्री कर रहे हैं, वो क्या है, झूठी है कि सत्य है। डिग्री हम किसकी कर रहे हैं, जगत की कर रहे हैं ना। जितनी भी हमने डिग्री की है, ज्ञान इकट्ठा किया, किसका, जगत का, प्रपंच का। जब प्रपंच ही नहीं है तो ज्ञान कहाँ से सत्य होगा। फिर भी हम कहते हैं ना कि हमने इतना पढ़ लिया, हम डॉक्टर हो गए, हम इंजीनियर हो गए, झूठे का हमने सत्य मान के अपने अंदर अहम बना बैठा रखा है। लेकिन है कहाँ, जिसका ज्ञान कर रहे हो झूठा है तो उसका ज्ञान कहाँ सत्य रहेगा। जो सत्य है उसको हमने देखा ही नहीं है, कि जिसके द्वारा ये सब को प्रकाशित हो रहा है वो सत्य है। लेकिन हमने सत्य मान के ही सब कुछ कर रहे हैं, नहीं तो करेगा ही कोई नहीं कुछ। यदि पता चल जाए झूठा है ना, तो कभी कोई करेगा ही नहीं कुछ। लोक व्यवहार इसका मतलब सब झूठा है, झूठा जो होता है उसको सत्य से निवृत्त थोड़ी करना है, झूठे को झूठे से निवृत्त किया जाता है। जो घड़ा है ना, घड़ा वो झूठा है तो उसको आप ज्ञान से नहीं फोड़ सकते। फोड़ सकते हैं क्या, घड़े को आप कहो कि घड़ा झूठा है तो उसको कहो आप ज्ञान से फोड़ दो, कह दो भी घड़ा फूट गया तो फूट जाएगा। ज्ञान तो यही है ना कि घड़ा नहीं है, घड़ा सामने पड़ा है, आप बोल दो भी घड़ा नहीं है तो घड़ा टूट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कल्पित को तोड़ने के लिए कल्पित चाहिए, सत्य नहीं चाहिए। उसको ज्ञान से आप कहते रहो भी घड़ा नहीं है, लेकिन घड़ा जाएगा नहीं कहीं जब तक डंडा नहीं लगाओगे। तो झूठा झूठे से जा रहा है ना, आपके पाँव में या आपके कहीं भी आपके कोई फोड़ा फिंसी हो गई तो उसको आप ज्ञान से हटा सकते हैं। चोट लग जाए तो ज्ञान से उसको कह दो कि नहीं है, हट जाएगी, झूठी दवाई लगानी पड़ेगी उसको। स्वप्न, स्वप्न में हो जा, जागृत में भी हो जाए, तब भी झूठे से ही झूठा जाएगा। कल्पित को कल्पित से हटाएंगे ना, ज्ञान से नहीं हटेगा वो। तभी ये कहते हैं ना कि प्रपंचो यदि विद्येत, कल भी हमने कहा था कि प्रपंच यदि होता तो उसकी निवृत्ति हो जाती। प्रपंच यदि होता ना तो उसको किसी ना किसी से हम फोड़ देते, चला जाता वो। हुआ ही नहीं है तो उसको कैसे कहेंगे तुम जाओ, हुआ ही नहीं है वो। सिर्फ हमने निश्चय ये करना कि हुआ ही नहीं है, उसको भगाना नहीं है कहीं। यदि होता तो उसको भगाते ना, सर्प यदि होता तो उसकी हम निवृत्ति करते, हुआ ही नहीं हो तो उसको हटाना हमने कहाँ से। तो हमने करना क्या है वहां सर्प को हटाने के लिए, केवल रस्सी को देखना है। यहां जो संसार है वो हुआ नहीं है लेकिन उसकी प्रतीति हो रही है ना, तो प्रतीति कैसे हटेगी, जिसमें वो भासता उसको जानना हमने। जगत से हमारा कोई मतलब नहीं है, जिसमें वो भासता है उसको जानना हमने। जगत को हमने कुछ नहीं कहना, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, केवल जिसमें वो भासता है उसको जानना है। जगत को कुछ नहीं कहना, जब आपको ज्ञान हो जाएगा तब भी जगत कहीं जाएगा नहीं। आप रोटी भी खाएंगे, सोएंगे भी, जाएंगे भी, मरने पर भी जाएंगे, खुशी पर भी जाएंगे, कोई कार्य थोड़ी छोड़ देंगे आप। इसका मतलब क्या हुआ कि जगत गया कहाँ, लेकिन आपकी दृष्टि में नहीं है, है तो वहीं का वहीं है, जैसा था वैसा ही है, लेकिन जैसा था वैसा उसको हमने जान लिया, जान लिया जैसा था वो। यही तो ज्ञान है, और ज्ञान क्या है। तो ये कहते हैं कि सकल दृश्य सो अध्यास, जो संपूर्ण दृश्य है वह अध्यास है, उसको छोड़ना। जब हम समझ लेंगे कि अध्यास क्या चीज है तो छोड़ने में कोई देरी नहीं लगती, नहीं ना लगती। जब हमने समझ लिया कि सर्प झूठा है तो सर्प को त्यागने में कोई देरी थोड़ा लगती है। त्यागने का मतलब क्या कि डर हमारा दूर हो जाता है। त्यागने का उसको क्या अर्थ है, उसका जो भय था हमारे अंदर वो समाप्त हो गया, छोड़ दिया हमने। जब उसको छोड़ देंगे सर्प को तो बाकी क्या बचेगा, रस्सी। रस्सी को हमने जानना है। तो ये कहते हैं कि सकल दृश्य जो दिख रहा है ये अध्यास है, इसको छोड़ना। तो इसको छोड़ के क्या करना, जग आधार में चित्त जोड़ना। दूसरी पंक्ति है कि जो इसका आधार है, आधार होता है जिसके ऊपर जो आश्रित होता है, जो आश्रय होता है उसको आधार कहते हैं। किसी चीज का जो आश्रय होता है ना उसको आधार, ओट भी कहते हैं, आश्रय भी कहते हैं। जैसे ये बेंच है तो ये हमारा आश्रय है, इसको आश्रय करके हम बैठे हैं, तो ये आधार हुआ ना। तो जगत का आधार क्या है, जिसमें जगत भासता है वो ब्रह्म है ना, आत्मा है, जब परमात्मा है उसमें चित्त जोड़ना। उसमें चित्त जोड़ना होगा जब इसको जो आश्रित है, जो कल्पित है इसको छोड़ देंगे, तो जिसमें कल्पित है उसमें चित्त जोड़ जाएगा अपने आप। जब हम सर्प का और सर्प का ज्ञान दोनों को छोड़ देंगे, सर्प को भी छोड़ देंगे, सर्प का ज्ञान भी छोड़ देंगे, तो हमारा चित्त कहाँ चले जाएगा, रस्सी में। तो जब प्रपंच को छोड़ देंगे, प्रपंच का ज्ञान भी छोड़ देंगे, तो बाकी को वो बचेगा जिसमें प्रपंच भासता है, वो हमारा अपना आप है। हमारे में भासता है ना, वो हमारे अंदर भासता है। तो जो हमारे अंदर भासता है उसको छोड़ के हम अपने आप को जानना है। जे अब हमारी सृष्टि है ना, हमारे मन की सृष्टि है ना साहब। अपने मन से कभी कभी आपने देखा होगा व्यवहार में कि दृश्य में से कुछ वस्तुएं ऐसी जिसको हम छोड़ देते हैं। कहते ना कि ये हमारे मन से उतर गया तो क्या हुआ, वो सृष्टि हमने अपने मन से हटा दी है। कोई आदमी ऐसा है कि कहते कि हमने आपको अपना आपको अपने मन से उतार दिया, इसका मतलब हमने माना था आपको, मानना छोड़ दिया। वो आदमी मरा थोड़ी है, आदमी तो है। हमने अपने मन से वो सृष्टि खत्म कर दी। तो देखो यहाँ हो रहा है कि नहीं ऐसा, थोड़ी सी सृष्टि तो हमने समाप्त कर ही दी है, हमने अपने मन से उतार दिया उसको। तो यदि पूरे जगत को कहो कि हमने आपको अपने मन से उतार दिया तो क्या बचेगा। एक आदमी को तो कह सकते हैं लेकिन सबको नहीं कह सकते ना, उसके साथ हम चिपके हुए हैं। संपूर्ण जो हमारे को दिखाई पड़ता है उसको भी ऐसा ही कहना है ना कि आपका हमारे से कोई संबंध नहीं है, तो कौन बचेगा फिर। अपना आप ही बचेगा। जब कुछ कुछ चीजें तो हम छोड़ सकते हैं लेकिन जिसकी हमारे को जरूरत होती है उसको नहीं छोड़ पाते ना। जहां जहां जरूरत खत्म हो जाती है उसको छोड़ते हैं, जहां स्वार्थ नहीं ना निकलता उसको छोड़ते हैं, जिसमें स्वार्थ होता उसको नहीं छोड़ते। तो यदि स्वार्थ से हम निस्वार्थ हो जाएंगे तो छोड़ देंगे। केवल हमारा बंधन क्या है, स्वार्थ का ही है काम सब, स्वार्थ के कारण सब बंधन है। जिस दिन हम निस्वार्थ हो जाएंगे, स्वार्थ से रहित हो जाएंगे, तो सभी को मन से उतार देंगे। तभी तो कहते हैं गुरु महाराज ना भी सेवा करत होए नेह कामी। नेह कामी का अर्थ क्या है, कामना से रहित हो जाए। किसको होत प्राप्त स्वामी, जो कामना छोड़ देगा उसको प्राप्त क्या होगा। कामना तो संसार की होती है ना, तो कामना का अर्थ है संसार छूट जाना, तो बाकी क्या बचेगा। जो संसार का मालिक है वही बचेगा, वो प्राप्त हो जाएगा। किसको होत प्राप्त स्वामी, जिसने कामना छोड़ दी भाव संसार छोड़ दिया, तो उसको बाकी क्या बचेगा। जिसमें संसार है वो बचेगा, वो उसको अपने आप प्राप्त हो जाएगा भाव, वो अपने आप में स्थित हो जाएगा। प्राप्त कुछ होना नहीं है। जब वो कामना छोड़ देगा तो कामना के कारण द्वैत थी उसके अंदर, द्वैत उसकी समाप्त होगी, तो उसको प्राप्त क्या होना, अपना आप अकेला ही बचेगा ना। वो जो द्वैत था दूसरा था उसने छोड़ दिया, तो बाकी अपना आप ही बचेगा केवल। और कोई स्वामी कहीं से आना नहीं है, ऐसा नहीं कि स्वामी कोई अलग है जो प्राप्त होगा। स्वामी तो स्वयं है, सभी का मालिक है ना स्वयं। तो जो नौकर है उनको छोड़ देगा तो बाकी क्या बचेगा, स्वामी अपने आप बचेगा ना। ये सारा जो कुछ है ये नौकरी तो है हमारे, आंखें हैं, कान है, इंद्रिय हैं, सब नौकर हैं, हमारे कहने से काम कर रहे हैं सब, लेकिन हम जानबूझ के नौकर को नौकर बन रहे हैं, नौकर के अधीन होके जो नौकर है उनको हमने मालिक बना रखा है, हम मालिक होकर के नौकर बने हुए हैं। हमारी आंखें जिस रूप को देखना चाहती हैं हम उसके पीछे चलते हैं, तो नौकर हम हुए कि ये हुई, जाना तो चाहिए इसको हमारे कहने पर भी, जिसको हम देखेंगे उसको तुम देखो, अपने आप नहीं तुम देख सकती, लेकिन जहां हमारी आंखें कहती है कि ये रूप अच्छा है, हमारे पांव उधर की तरफ जाते हैं, तो नौकर हम हैं। हम उल्टा समझ गए ना, जो कोई उल्टा किसी को भ्रम हो जाए ना कि मैं इसका नौकर हूं, तो उसको कोई बताएगा तभी वो समझ कहेगा, नहीं कोई बताएगा उसको नहीं तुम नौकर नहीं हो, ये आपका नौकर है, तो हम तो नौकर नहीं है लेकिन नौकर समझ लिया हमने। तो स्वामी की प्राप्ति कहीं अलग से नहीं होनी है, स्वामी हम हैं स्वयं। जब हम नौकरों को छोड़ देंगे तो स्वामी पना तो हमारे में अपने आप आ जाएगा, लेकिन हमने कभी अभी तक ऐसा नहीं समझा, हम कहते हैं कि वो स्वामी है, हम सेवक हैं, हम सेवक तुम स्वामी कहते हैं, बोलते भी रहते हैं कि तुम स्वामी हो हम सेवक हैं, ऐसा नहीं है, हम ही स्वामी हैं, बाकी सारा कुछ सेवक ही है, जितना संसार है सब सेवक है, हम स्वामी नहीं समझ रहे अपने आप को, सेवक समझ रहे हैं। व्यवहार में अलग बात है, व्यवहार में लोगों को बतलाने के लिए शिष्टाचार है कि वो स्वामी है हम सेवक हैं, लेकिन हम ही स्वामी हैं, स्वामी का तो हमारा कोई अंतर नहीं ना है। जानते जान कहते हैं ना, अभी पंक्ति मेरे को उठ नहीं रही, इसी बात को गुरु महाराज ने कहा है, हाँ जैसे हार हार जन दो ही एक है, हार हार जन एक हरी है एक हरिजन है, हरिजन वो वाले नहीं जो बाहर वाले हरिजन ना कहना, कभी हरिजन भी होते हैं, हरि के जान मतलब दास जो भक्त हैं हरि के, और हरि है उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं, हरि हरिजन दो ही एक है, अंतर नहीं उनका कोई। सेवक स्वामी भाव तो व्यवहार में है, वास्तव में नहीं है, जब तक सेवक स्वामी भाव रहेगा तब तक मुक्ति नहीं हो सकती, इसलिए कहते हैं ना कर्म में मुक्ति नहीं है, भक्ति से मुक्ति नहीं होती, भक्ति होती है द्वैत को लेकर के, सेवक स्वामी भाव से भक्ति होती है, तो भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि तो हो सकती है, मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि द्वैत में होती ना विभक्ति, तो भक्ति के ऊपर जाना पड़ता विचार में, विचार में जाकर के सेवक स्वामी भाव समाप्त हो जाता है, जब तक भक्ति करेंगे तब तक सेवक स्वामी भाव रहेगा, तो भक्त इसलिए मुक्ति नहीं चाहता, भक्त कभी मुक्ति नहीं चाहता, क्योंकि उसको केवल प्रेम चाहिए, तो प्रेम के लिए उसको दूसरा प्रेमी चाहिए साथ में, जो प्रेमी है उसको प्रीतम चाहिए अपना, जब प्रेमी और प्रीतम रहेंगे तो प्रेम तो उसको मिलेगा, अवस्था तो उसको कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी, लेकिन परंपरा मिलेगी घूम करके मिलेगी, लेकिन जब उसके ऊपर जाएगा तो फिर प्रेमी और प्रेमिका वाला जो भाव है समाप्त हो जाएगा, केवल वो प्रियतम का ही रूप हो जाएगा, वो फिर उसी को गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रियतम जान ले हो मन माही, पहले भी हमने विचार एक दिन किया था, प्रियतम को जानो, जब प्रीतम को जानने का अर्थ के प्रियतम ही हो जाओ, प्रेमी बन के अलग नहीं रहो, प्रियतम को जानो, जानने का अर्थ क्या कि प्रियतम का रूप हो जाओ, प्रेमी हो करके हम प्रियतम को जानते तो हैं तभी तो प्रेमी बनते हैं ना, कोई हमारा प्रियतम होता है तो हम अपने आप को प्रेमी मानते हैं, लेकिन जब हम प्रेमी मानते हुए प्रियतम को ही केवल हमारे सामने कला प्रियतम ही रह जाता है, हमारा अपना आप ये होती है प्रेमियों की बात यही होती है, जो असली प्रेमी होता है ना, जो असली प्रेमी होता है वो अपने आप को प्रेमी मानता ही नहीं है, वो केवल प्रियतम ही मानता है, जैसे बुल्ले शाह ने कहा है ना, बुल्ले शाह ने लिखी है ना बात कि जो हीर है वो क्या कहती है, हीर कहती है ना हीर, बातें तो वैसे आम लोग तो इसको उल्टा समझते हैं लेकिन बातें समझने वाली होती है, वो कहती है कि रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा होई, मैं हूं हीर नहीं रही, मैनू वो कहती मैनू हीर ना आखो हूं मैनू रांझा कहो, तो इसका मतलब क्या हुआ, वह प्रियतम ही हो गई है, प्रेमी प्रेमिका नहीं रही, वो रांझा ही बन गई है वो। तो प्रियतम को जानने का अर्थ क्या है कि प्रियतम ही हो जाओ, प्रेमिका वाला स्वभाव जो छोड़ दो उसको, भाव सेवक वाला जो भाव उसको छोड़ के स्वामी हो जाओ। तो इसलिए कहते ना कि मतलब सेवा करते हो नेह कामी तस्को हो प्रात स्वामी, ये अध्यास है, बात यहाँ अध्यास की चल रही है कि संपूर्ण जो हमारे को दृश्य दिखाई पड़ता है अध्यास का मतलब भ्रम मात्र है। ये जगत जो प्रपंच है जे भी झूठा है, इसका ज्ञान भी झूठा है। तो हमने तो जो इसका आधार है ना उसमें चित्त को जोड़ना है, आधार इसका ब्रह्म है, परमात्मा है, आत्मा है, आत्मा परात्मा एको करे, गुरबाणी की पंक्ति है ना, आत्मा परात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे, ये गुरु अर्जन देव जी का वाक्य है, आत्मा और परात्मा दोनों को एको करे, उसका जो बीच में आपको धर्मों को लेकर के विशेषणों को लेकर के भेद है ना उसको मिटा के दोनों को एको करे, तो अंतर की दुविधा अंतर मरे, जो अंदर की दुविधा थी ना वो अंदर ही मर जाती है, मन मरे धात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए, बिन मन मुए कैसे हरी पाए, जब तक मन नहीं मरता भाव अंतःकरण जीवपना नहीं मरता तब तक कैसे हरी पाए, हरी से कैसे मिलेगा। सिर्फ इतना ही तो है कि हम अपने को जीव मान रहे हैं, मन मरे धात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हरी पाए, क्योंकि हमने अपने को मन मन का अर्थ जीव मान रखा है। तो वैसे महाराज जी कहते हैं तुम जीव नहीं है, मन तू ज्योत स्वरूप है, हे मन हे जीव तू ज्योति स्वरूप है, अपना रूप मूल पहचान, कहते अपने मूल को पहचान, तुम ज्योति हो, ज्योति होते हुए अपने अपने आप को जड़ मान रखा है, मन हार जी तेरे नाल है, ये जीव हरी जो है वो तेरे साथ अभेद है, अलग नहीं है, गुरमति रंगमान, पर गुरु के पास जाकर के गुरु की मत लेकर के गुरु का उपदेश लेकर के रंगमान, फिर उसके प्रेम के रस को मानेगा, फिर उसके साथ अभेद हो जाएंगे। तो इसलिए जब धीरे धीरे चिंतन करेंगे तो हमारे को अगले वाला स्टेप जरूर मिलेगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।